राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 6 कुल्हाड़ी की पुनर्प्राप्ति। भविष्यवक्ताओं के दल ने एलीशा से विनती की, सुनिए, आपके द्वारा हमारे लिए ठहराया गया घर अब छोटा पड़ रहा है। हमें आज्ञा दीजिए कि हम सब यर्दन नदी के तट पर जाए और हम में से हर एक वहां से एक एक बल्ली काटे और हम वहां अपने लिए घर बनाएंगे। एलीशा ने आज्ञा दे दी, जाओ। उनमें से एक ने एलीशा से विनती की, अपने सेवकों के साथ चलने की कृपा कीजिए। एलीशा ने हाँ कह दिया, अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तब वह उनके साथ चले गए। जब वे यर्दन के तट पर आए, उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया। उनमें से एक भविष्यद्वक्ता बल्ली काट रहा था, तब उसकी कुल्हाड़ी की फाल पानी में जा गिरी। वह भविष्यद्वक्ता चिल्ला उठा, ओह मेरे स्वामी, वह तो उधार की फाल थी। इस पर परमेश्वर के जन ने उससे पूछा, किस जगह पर गिरी है वह? जब उसने उन्हें वह जगह दिखाई, भविष्यद्वक्ता ने एक छड़ी काटी और उस जगह पर फेंक दी। लोहे की वह फाल पानी पर तैरने लगी। एलीशा ने उसे आदेश दिया, इसे उठा लो। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। घोड़े और अग्निरथ। उस मौके पर जब आराम का राजा इसराइल से युद्ध करता था, उसने अपने सेवकों की सलाह के अनुसार निर्णय लिया, मेरा तंबू अमूक जगह पर होगा। परमेश्वर के जन ने इसराइल के राजा को यह संदेश भेजा, सावधान रहिए, आरामी सेना वहीं पहुंच रही है, तब उस स्थान के निकट से होकर ना जाइएगा। इसराइल का राजा उसी स्थान को अपनी सेना भेजा करता था जिसके विषय में उसे परमेश्वर के जन द्वारा सूचना मिली थी। इस प्रकार उसे चेतावनी मिलती रहती थी, फलस्वरूप वह अपने आप की सुरक्षा कर लेता था। यह अनेक बार हुआ। इससे आराम के राजा का मन बहुत ही घबरा गया। उसने अपने सेवकों की सभा बुलाकर उनसे प्रश्न किया, क्या आप लोग मुझे यह बताएंगे कि हम में से कौन है जो इसराइल के राजा की ओर है? एक सेवक ने उत्तर दिया, कोई भी नहीं महाराज। हाँ, इसराइल में एक भविष्यद्वक्ता है, एलीशा। वह इसराइल के राजा को आपके द्वारा आपके कमरे में कहे गए शब्दों तक की सूचना दे देता है। आराम के राजा ने आदेश दिया, जाओ मालूम करो कहाँ है यह भविष्यद्वक्ता, कि मैं सैनिक भेज उसे पकड़वा सकूं। राजा को सूचित किया गया, महाराज वह भविष्यद्वक्ता दोथान में छिपा हुआ है। राजा ने उस स्थान के लिए घोड़े, रथ और एक बड़ी सैनिक टुकड़ी भेज दी। रात में वहां पहुंचकर उन्होंने उस नगर को घेर लिया। तड़के जब परमेश्वर के जन का सेवक जागा, उसने बाहर जाकर देखा कि सेना, घोड़े और रथ नगर को घेरे हुए हैं। सेवक कह उठा, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? एलीशा ने उत्तर दिया, डरो मत, क्योंकि वे जो हमारे साथ हैं गिनती में उनसे अधिक है जो उनके साथ हैं। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, यहावे कृपा कर इसे दृष्टि दीजिए कि यह देख सके। तब यहावे ने उस युवा सेवक को दृष्टि दी और उसने देखा एलीशा के चारों ओर पहाड़ घोड़ों और अग्निरथों से भरा हुआ था। जब आरामी सेना एलीशा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, एलीशा ने यहावे से यह प्रार्थना की, कृपा कर इन लोगों की दृष्टि छीन लीजिए। तब एलीशा की प्रार्थना के अनुसार यहावे ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्हें एलीशा ने कहा, ना तो यह वह मार्ग है और ना ही यह वह नगर। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस व्यक्ति तक ले जाऊंगा जिसे तुम खोज रहे हो। तब एलीशा ने उन्हें शमरिया पहुंचा दिया। जैसे ही उन्होंने शमरिया में प्रवेश किया, एलीशा ने प्रार्थना की, यहावे इन व्यक्तियों की दृष्टि लौटा दीजिए कि अब ये देख सके। तब यहावे ने उन्हें दृष्टि प्रदान की। उन्होंने देखा और पाया कि वे शमरिया में है। जैसे ही इसराइल के राजा ने उन्हें देखा, वह एलीशा से कहने लगा, मेरे पिताजी, क्या हम उन पर वार करें? बताइए, क्या हम उन पर वार करें? एलीशा ने उत्तर दिया, तुम्हारा उन पर हमला करना सही ना होगा। क्या उन बंदियों की हत्या की जाती है जिन्हें तुम तलवार और धनुष के द्वारा बंदी बनाते हो? उन्हें भोजन परोसो कि वे खा पीकर तृप्त हो जाए और अपने स्वामी के पास लौट जाए। तब उनके लिए एक उत्तम भोज तैयार किया गया। जब वे खा पीकर तृप्त हो गए, इसराइल के राजा ने उन्हें विदा किया। और वे अपने स्वामी के पास लौट गए। इस घटना के बाद अरामी फिर कभी इसराइल पर हमला करने नहीं आए। बेन हदद द्वारा शमरिया की घेराबंदी। कुछ समय के बाद अराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना तैयार की और शमरिया पर हमला किया और नगर की घेराबंदी कर ली। शमरिया में इस समय भयंकर अकाल फैल गया। शत्रु सेना ने इसे घेर रखा था। स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि गधे का सिर चांदी के 80 शेकेलों में और एक चौथाई कबूतर की बीट 5 शेकेल में बेची जा रही थी। एक दिन इसराइल का राजा नगर की शहरपनाह पर चलता हुआ जा रहा था। एक स्त्री ने उससे ऊंचे स्वर में कहा, महाराज मेरे स्वामी सहायता कीजिए। राजा ने उत्तर दिया, यदि यहावे ही तुम्हारी सहायता नहीं करते तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या खलिहान से या अंगूर रस के कुंड से। राजा ने फिर आगे यह भी पूछा, क्या तकलीफ है तुम्हें। स्त्री ने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, आज मुझे अपना पुत्र दे दो कि वह हमारा आज का भोजन हो जाए। कल मेरा पुत्र हमारा भोजन हो जाएगा। तब हमने मेरे पुत्र को पकाकर खा लिया। दूसरे दिन मैंने इसे याद दिलाया, लाओ अपना पुत्र को ताकि वह हमारा भोजन हो जाए, मगर इसने तो अपना पुत्र छिपा दिया है। जब राजा ने उस स्त्री के ये शब्द सुने, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। इस समय वह शहर पनाह पर टहल रहा था। लोगों ने यह सब देखा। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि वह राजसी वस्त्रों के भीतर टाट पहने हुआ था। राजा ने घोषणा की, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही बल्कि इससे भी कड़ा व्यवहार करे। यदि आज शाफात के पुत्र एलीशा का सिर उसके धड़ से लगा रह जाए। एलीशा अपने घर में बैठे हुए थे, उनके साथ नगर पुरनिये भी बैठे हुए थे। इसी समय राजा द्वारा भेजा दूत यहीं आ रहा था। अभी यह व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचा था, मगर एलीशा अपने साथ के पुरनियों से कह रहे थे, देखो इस हत्यारे को, उसने मेरा सिर उड़ाने के लिए एक दूत भेजा है। ऐसा कीजिए, जैसे ही वह दूत यहाँ पहुंचे, दरवाजा बंद कर ले और उसे अच्छी तरह से बंद किए रखे। उसका स्वामी उससे अधिक दूर नहीं होगा। एलीशा उनसे यह कह ही रहे थे कि उस दूत ने उनके पास आकर उनसे कहा, यह मुसीबत यहावे की ओर से है। अब मैं आगे यहावे का इंतजार और क्यों करता रहूं।